नमस्कार भारत, आज है 12 अप्रैल दिन गुरुवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। उन्नाव रेप केस में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने दिया एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच की सिफारिश का आदेश। बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी विधायक कुलदीप सिंगर ने कहा, करेंगे जांच में सहयोग।
हम तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई सहने के लिए तैयार है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई मानने को तैयार है, हमारा न्यायपालिका पे विश्वास है।
पाकिस्तान में 8 साल की बच्ची से रेप और उसे जिंदा जलाने की घटना के बाद सड़कों पर उतरे लोग। दुनिया जहान में आज चर्चा सीरिया की, जहां पिछले दिनों हुए कथित रासायनिक हमले ने रूस और अमेरिका को आमने सामने ला खड़ा किया है।
रशिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इस्लामिक स्टेट, तो ये सब बेसिकली अमेरिकन कंट्रोल एनर्जी रिसोर्सेज।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दाश से। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर पर लगे बलात्कार के आरोपों की जांच से संबंधित एसआईटी की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। साथ ही पीड़िता के पिता की मौत की जांच से संबंधित उन्नाव जेल प्रशासन की रिपोर्ट और सरकारी जिला अस्पताल की लापरवाही के संबंध में रिपोर्ट सरकार को भी दे दी गई है। इन रिपोर्टों के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया है कि भाजपा नेता कुलदीप सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। सरकार ने पीड़ित परिवार को तुरंत सुरक्षा मुहैया कराने की भी बात की है। इससे पहले कल देर शाम कुलदीप सेंगर मीडिया के सामने आए थे और कहा था कि वो भगोड़ा नहीं है। कुलदीप सेंगर के खिलाफ एक नाबालिग युवती ने बलात्कार का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि जब तक सीरिया के डूमा में हुए कथित रासायनिक हमले के संबंध में फिलहाल अमेरिका ने कोई फैसला नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी थी कि रूस अपने दोस्त सीरिया पर मिसाइल हमले के लिए तैयार रहे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा हकाबी सैंडर्स ने कहा, हमारे पास कई विकल्प हैं और हम उन सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इस मामले में अभी आखिरी फैसला लिया नहीं गया है। मुझे लगता है कि आप इसके बारे में काफी कुछ पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन राष्ट्रपति के सामने कई रास्ते मौजूद हैं और हम कदम उठाने से पहले सभी रास्तों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा हकाबी सैंडर्स के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि ब्रितानी कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ राजनीतिक प्रचार के कारणों से जिन यूजर्स का डेटा शेयर किया गया है उनमें उनका डेटा भी शामिल है। अमरीकी संसद की एक समिति के सामने पेश हुए जकरबर्ग ने माना कि साल 2016 में अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में दखल देने की रूसी कोशिशों की फेसबुक जल्दी पहचान नहीं कर पाई। सिलिकॉन वैली के एक चुनाव क्षेत्र से नेता एन्ना यीशू का कहना है कि 2 दिन तक जकरबर्ग से पूछताछ हो रही है, लेकिन इसका कुछ सकारात्मक नतीजा नहीं निकल रहा। ये कोई मुश्किल सुनवाई नहीं थी, और जब मैं कह रही हूँ मुश्किल सुनवाई तो आप समझिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कमरे के भीतर 6,000 पाउंड का गोरिल्ला है और जो मुद्दे हैं वो हमारे गणतंत्र को अभूतपूर्व रूप से क्षति पहुंचाने वाले हैं। आप इसका हिसाब भी नहीं लगा सकते। हम अपने चुनाव बेहद सोच समझ कर करवाते हैं और ये हमारे स्वस्थ गणतंत्र की पहचान है, लेकिन अगर इसे प्रभावित किया जा रहा है तो एक नागरिक के तौर पर हमें अपने गणतंत्र की रक्षा के लिए आगे आने की ज़रूरत है। अमरीकी नेता एन्ना यीशू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी संसद में वरिष्ठ रिपब्लिकन नेता पॉल रायन ने कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। पॉल रायन अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी स्पीकर हैं, माफ कीजिएगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में स्पीकर भी हैं। वो 29 रिपब्लिकन नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्होंने घोषणा की है कि नवंबर में होने वाले चुनावों में वो उम्मीदवार के तौर पर नहीं उतरेंगे। पॉल रायन को साल 2015 में स्पीकर चुना गया था। पश्चिम अफ्रीकी राज्य निजेर का कहना है कि माली के साथ सटी उसकी सीमा के पास से एक जर्मन सहायता कर्मी का अपहरण कर लिया गया है। निजेर के अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि जॉर्ज लांगे को देश के पश्चिम में मौजूद शहर आइनेट्स में मोटरसाइकिल पर आए कुछ लोगों ने बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया है। अब तक अपहरणकर्ताओं की पहचान नहीं की जा सकी है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला देने वाले उन्नाव रेप केस के मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने FIR दर्ज करने और मामले की जांच CBI से कराने की सिफारिश के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले कल रात एक नाटकीय मोड़ आया जब मामले के अभियुक्त BJP विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अचानक लखनऊ SSP के आवास पर जा पहुंचे। वहां उन्होंने कई TV चैनलों के पत्रकारों से बात की और कहा कि वो भगोड़े नहीं हैं बल्कि जाँच की प्रक्रिया में जब भी उनकी जरूरत समझी जाएगी वो हाजिर हो जाएंगे।
हम तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई सहने के लिए तैयार हैं, कड़ी कार्रवाई मानने को तैयार हैं। हमारा न्यायपालिका पे विश्वास है, न्यायपालिका का हम आदर करते हैं, हम सब कुछ चाहते हैं।
ये थे BJP विधायक कुलदीप सेंगर। और अब सीधे चलते हैं अपने सहयोगी समीर आत्मज मिश्र के पास लखनऊ। समीर, SIT की रिपोर्ट के बाद सरकार ने FIR दर्ज करने और CBI जाँच की सिफारिश के आदेश दिए हैं, क्या है पूरी जानकारी?
जी अमरीश, इस मामले में मुख्य रूप से जो ADG जोन है लखनऊ के राजीव कृष्ण, उनकी अध्यक्षता में SIT गठित की गई थी। देर रात उसकी रिपोर्ट उन्होंने सरकार को सौंपी है। इसके अलावा दो और रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी गई। एक DIG जेल ने अलग रिपोर्ट सौंपी है जो कि जेल में किस तरीके से अभी जो पीड़ित लड़की है उसके पिता की मृत्यु हुई है उसकी पूरी जाँच उन्होंने की है। दूसरी रिपोर्ट वहाँ के DM ने भेजी है जिसमें जो जिला अस्पताल है का उन्नाव का, वहाँ किस तरीके से लापरवाही की गई है उससे संबंधित है। तो ये तीन रिपोर्ट के आधार पे सरकार ने एक तो इस पूरे मामले की जांच को CBI से कराने की सिफारिश का फैसला लिया है। दूसरे ये फैसला लिया गया है कि इसमें अभी तक अभियुक्त नहीं बनाए गए थे कुलदीप सेंगर जो बांगरमऊ उन्नाव के विधायक हैं, लेकिन अब उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। उनके साथ ही कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की बात कही गई है इस SIT की रिपोर्ट के बाद। दूसरे कुछ और भी कार्रवाई करने का फैसला लिया है सरकार ने। इसमें एक ये भी है कि उन्नाव के जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर डी के द्विवेदी और एक अन्य डॉक्टर, उनको भी निलंबित करने का फैसला लिया गया है। साथ में तीन अन्य डॉक्टरों को लापरवाही बरतने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है उनके खिलाफ। इसके अलावा जहां माठी गांव है जहां पे इसका विधायक का भी घर और पीड़ित लड़की का भी घर है, उस इलाके के जो पुलिस क्षेत्र अधिकारी हैं कुंवर बहादुर सिंह, उनको भी सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। साथ में ये भी कहा गया है कि पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षा दी जाएगी। ये जो गाँव में अपने रहना चाहेंगे तो गाँव में उनको सुरक्षा दी जाएगी, अगर वो शहर में उन्नाव में रहना चाहेंगे तो वहां उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। तो ये सारे फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि आज दिन में 10 बजे DGP और प्रमुख सचिव गृह, ये दोनों लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। कुछ और भी कार्रवाई सरकार ने की होगी तो शायद उसकी ये जानकारी दें। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वतः संज्ञान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले का लिया था और आज ही सुनवाई करने की तारीख तय की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई होगी। तो आज का दिन इस केस से जो पूरा ये मामला है इसको लेकर के काफी अहम है। अब देखना है कि और क्या होता है आगे।
लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि 17 साल की पीड़ित युवती ने BJP विधायक कुलदीप सेंगर और उनके भाइयों पर आरोप लगाया है कि पिछले साल जून में उन्होंने उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया। युवती का आरोप है कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस में मामला दर्ज नहीं किया गया। इस युवती ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। युवती के पिता की न्यायिक हिरासत में हुई संदिग्ध मौत की भी जांच चल रही है। इस मामले में आगे जो भी डेवलपमेंट होगा उसे जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com से जुड़े रहिए। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 8 साल की एक बच्ची से कथित रेप और उसे जिंदा जलाने की घटना को लेकर लोग सड़कों पर हैं। पिछले हफ्ते नूर फातिमा नाम की एक बच्ची कुछ सामान खरीदने के लिए घर के पास की दुकान पर गई थी और फिर लौटकर घर नहीं आई। सोमवार को बेहोशी की हालत में वो मिली और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उसकी मौत हो गई। मामले की पूरी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने इस्लामाबाद में BBC संवाददाता उमर दराज से बात की।
اس میں جو لوکل میڈیا ہے پاکستان میں وہ پچھلے ایک دو سے یہ چیزیں چلا رہا تھا جس کا آپ نے ذکر کیا, لیکن ابھی تک پولیس جو ہے اس نے یہ کنفرم نہیں کیا ہے کہ بچی جو ہے اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا, اور نہ ہی یہ چیز سامنے آ سکی ہے کہ اس کو آگ جو ہے وہ کیسے لگی تھی, وہ کیسے چلی, اس کو کیا جلایا گیا یا کیا وہ ایکسیڈنٹلی اس کو آگ لگی. اور جو چیزیں لوکل میڈیا پر سامنے آ رہی ہیں ان میں کچھ میں فیکٹس جو ہیں وہ درست نہیں ہیں, جو پولیس بتا رہی ہے وہ اس کے بالکل مختلف ہیں. تو میری جو اپنی انویسٹیگیشن اس کے مطابق یہ ہے کہ پولیس جو ہے جو پولیس نے پروگریس رپورٹ بھیجی ہے اتھارٹیز کو, اس کے مطابق انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچی جو ہے وہ گھر سے, اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بچی جو ہے وہ تھوڑی مینٹلی چیلنج تھی, 8 سال کے قریب اس کی عمر تھی اور یہ ایک پہلے والی تھی, تو اس کے ماں باپ کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ تھوڑی مینٹلی چیلنج تھی, لیکن وہ گئی ہے گھر سے پاس کے قریب آتے ایک شاپ کے اوپر, وہاں سے اس نے فائر کریکٹ خریدے, اور اس فائر کریکٹ خریدنے کے بعد جب وہ گھر واپس آ رہی ہیں تو اس کو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ اس کو آگ لگی ہوئی تھی, اور پھر وہ گھر کے اندر آ گئی, اس کو کچھ لوگوں نے رش کیا گھر کے اندر, لیکن جب تک انہوں نے آگ پہنچائی تب تک اس کافی جل چکی تھی. پھر اس کو ریسکیو کی سروس کی ایک ویکل کے اندر اس کو وہاں کے لوکل ہاسپٹل لے کے جایا گیا, لیکن وہاں پہ ڈاکٹر نے بولا کہ 80% جل چکی ہے, تو آپ اس کو برن سینٹر لاہور لے کے جائیں, بہت سی وقتی سے تھوڑا سا دور ہے, یہاں تقریباً 2 گھنٹے بائی روڈ آپ کو لگتے ہیں 2 سے 2.5 گھنٹے. تو اس کو جب لاہور لایا گیا برن سینٹر میں, ڈاکٹر نے اس کو ایگزامن کیا, پھر اس کو ٹریٹ کرنا شروع کیا, لیکن وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی انجری سے کچھ عرصے کے بعد. لیکن جب واپس باڈی اس کی بھیجی لوکل ہاسپٹل کی طرف وطنی میں, تو انہوں نے لوکل ہاسپٹل کو یہ لکھا کہ ان کے ایگزامینیشن کے دوران دے ڈسکورڈ کہ اس کا ہائمن جو ہے وہ واز ناٹ انٹیکٹ, تو اٹ از اے پولیس کیس, تو آپ اس کو اس کے اوپر اٹاپسی کریں, اس کا پوسٹ مارٹم ضرور کیجیے گا.
کہا جا رہا ہے کہ سوموار کو لڑکی جلی ہوئی حالت میں ملی تھی, اور اس کے بعد جو اب تک کی میڈیکل جانچ ہوئی ہے اس میں کنفرم نہیں ہو پایا کہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا تھا, تو اس کے بعد کیا ویروھ پردرشن کا جو ایک دائرہ ہے وہ کیا زیادہ بڑا ہے؟
بالکل بڑا ہے, اس کے اندر انہوں نے تقریباً پولیس نے کچھ 10 سے 12 جو لوگ تھے جن کے اوپر ان کو شک ہو سکتا تھا ان کو انویسٹیگیشن میں شامل کیا, جس میں وہ شاپ کیپر بھی شامل تھا جس سے اس نے فائر کریکٹس خریدے, اور اس نے بتایا کہ جو ٹائم اس نے بتایا اس کے مطابق بچی نے جو فائر کریکٹس خریدے اور پھر جب وہ گھر واپس آئی جانے لگی اور اس کو آگ لگا ہوا پایا گیا, تو اس کے درمیان محض 10 سے 15 منٹ کا ٹائم تھا. تو پولیس جو ہے وہ ابھی تک انویسٹیگیشن کر رہی ہے, انہوں نے اب یہ کیا ہے کہ جب اس کی اٹاپسی کی گئی تو اس وقت بھی ڈسٹرکٹ جو ہاسپٹل تھا, جو لوکل ہاسپٹل تھا, اس کے ڈاکٹر نے یہ کہا کیونکہ اس کی باڈی اتنی زیادہ جلی ہوئی تھی, اس لیے وہ کنکلوسولی یہ نہیں کہہ سکتے وہ ریپ ہوئی ہے ہی نہیں, تو اس کے لیے انہوں نے اس کی باڈی سے سیمپلز کلیکٹ کیے اور اس کو فورینسکس کے لیے انہوں نے فورینسک لیبورٹری بھیج دی ہے لاہور میں. اب اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے 3 سے 4 دن کا اس کو کنفرم کرنے کے لیے فورینسک لیبورٹری کو, تو اب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک فورینسک لیبورٹری کی رپورٹ نہیں آتی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے کے ساتھ ریپ ہوا ہے یا نہیں.
اسلام آباد سے جانکاری دے رہے تھے بی بی سی اردو سیوا کے سنواد داتا عمر دراز. بھارت کی سروچ عدالت نے بدھوار کو کہا کہ مکھیہ نیایادھیش کو ہی یہ ادھیکار ہے کہ وہ کون سا کیس کسے سونپتے ہیں اور سمویدھانک پیٹھ میں کن ججوں کو شامل کرتے ہیں. عدالت نے کہا کہ سروچ نیایالے کے ججوں میں سینئر اور جونیئر جج جیسی کوئی بات نہیں ہوتی, کیونکہ سبھی جج سمان روپ سے یوگیہ ہوتے ہیں. اشوک پنڈت نام کے ایک وکیل نے جنہت یاچکا دائر کر مانگ کی تھی کہ مکھیہ نیایادھیش کی ادھیکشتا والی 3 سدسیہ سمویدھانک پیٹھ میں شامل 2 انیہ جج سب سے ورشٹتم ہونے چاہیے. اس یاچکا کو سپریم کورٹ نے خارج کرتے ہوئے یہ کہا کہ پہلے ہی 5 ججوں کی ایک پیٹھ نے یہ ویوستھا دی تھی کہ روسٹر کو لے کر سپریم کورٹ کے مکھیہ نیایادھیش کی شکتیاں سب سے زیادہ ہیں. بی بی سی سنواددتا رجنیش کمار نے سپریم کورٹ کے ورشٹھ وکیل دشینت دوے سے اس فیصلے کی اہمیت کو لے کر بات کی.
دیکھیے یہ فیصلہ ویسے یہ کیس کی سنوائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی, یہ پیٹیشن مجھے موٹیویٹڈ پیٹیشن لگتا ہے, اور یہ کوئی کارن سے کوئی اور پیٹیشن جو شانتی بھوشن جی نے فائل کی ہے اس پیٹیشن کو بلاک کرنے کے لیے کسی نے یہ پیٹیشن فائل کی تھی. اچھا رہتا کہ سپریم کورٹ اس سے دور رہتا اور اس میں کوئی ججمنٹ نہیں دیتا, کیونکہ آلریڈی چیف جسٹس کی 5 ججوں کی کھنڈ پیٹھ نے یہ آرڈر پہلے دیا ہوا ہے پچھلے سال کہ بھائی چیف جسٹس ماسٹر آف دا رول ہے اور وہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں اور میٹرز الوکیٹ کر سکتے ہیں. پر ایک اور سیریس ایشو ہے کہ یہ جو الوکیشن چیف جسٹس کی سکتا ہے उस सत्ता को वो किसी भी तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या उस सत्ता पर कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए कि कोई कंट्रोल होना चाहिए कि जजेस सिलेक्टिवली लिस्टिंग चीफ जस्टिस कर सकते हैं कि नहीं, तो वो एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सुप्रीम कोर्ट को आज नहीं तो कल उस प्रश्न को जरूर उत्तर देना होगा, क्योंकि एक तरह से थोड़ा लग रहा है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है और वो दुरुपयोग के कारण ऑपोजिशन के लीडर्स के सामने थोड़े बहुत जो डिसीजन आए हैं वो थोड़ा डाउट रेस करते हैं और सत्ताधारी जो पक्ष है उनकी फेवर में थोड़े जो डिसीजन आए वो भी थोड़े क्वेश्चन मार्क रेस करते हैं। तो ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है और अच्छा होता कि चीफ जस्टिस साहब इसको सब सीनियर 5 जजेस के साथ लेकर इसको एड्रेस करते, ना कि एक अपनी बेंच में बैठ के इसको डिसाइड करते। तो मेरे ख्याल से आज का जो फैसला है वो दुखद है।
ये थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे। और अब नजर डाल लेते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों पर, और ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मानसी दास। मानसी, किस खबर से आप शुरुआत करेंगी?
आपने जो अभी खबर बताई है सुप्रीम कोर्ट वाली, इसी खबर को दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापा है। और एक खबर जो जिसके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं वो है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ये जो है आज एक दिन का उपवास करने वाले हैं, और सिर्फ मोदी ही नहीं पूरी भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, ये सब आज एक दिन का उपवास करने वाले हैं। और मामला ये है कि संसद ना चलने देने के बारे में या नाराज़गी प्रकट करने के लिए उपवास करना चाहते हैं। इससे पहले दिल्ली प्रदेश भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो इस दिन खाना खाते हुए सेल्फी लेते हुए ना दिखें और अपने इलाके से खाने के खोमचों को भी हटवा दें। प्रदेश भाजपा का कहना है कि जिन कार्यकर्ताओं को डायबिटीज़ की शिकायत है वो उपवास में हिस्सा न लें। एक खबर दैनिक भास्कर से, इस खबर के अनुसार अभी जैसे उन्नाव का मामला आप श्रोताओं ने सुना कि महिला उत्पीड़न के मामले में किस तरह की उदासीनता रही पुलिस की, एक और मामला है उत्तर प्रदेश का और इस मामले में भी पुलिस की उदासीनता सामने आई है। मामला है अलीगढ़ की एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म का, जिसकी शिकायत करने जब वो थाने पहुंची तो पुलिस ने उसकी शिकायत नहीं लिखी। मामला पहुंचा मुख्यमंत्री के पास, उन्होंने गुहार लगाई, जिसके बाद 15 दिन की देरी के बाद मामला दर्ज हुआ। और इसके बाद जब पीड़िता की शिकायत पर पुलिसकर्मियों पर लापरवाही बरतने के सिलसिले में विभागीय कार्यवाही हुई तो पुलिसकर्मियों ने दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में जो चार्जशीट दायर की वो मारपीट से संबंधित चार्जशीट थी और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए मानसी दास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में जारी 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अब तक 12 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक जीता है। कल भारतीय शूटर श्रेयसी सिंह ने महिलाओं के डबल ट्रैप इवेंट में भारत को 12वां स्वर्ण पदक दिलवाया। सीधे चलते हैं गोल्ड कोस्ट बीबीसी संवाददाता रेहान फजल के पास। रेहान, भारत का अब तक का प्रदर्शन अच्छा रहा है, आज किन किन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रहेगी?
देखिए, इस समय करारा इंडोर स्टेडियम से खबर ये है कि सुशील कुमार ने 74 किलोग्राम कुश्ती में चेवन पोल्फर कनाडा को हरा दिया है 11-0 से, और इस रेस अगले राउंड में प्रवेश किया है। 53 किलोग्राम में बबिता कुमारी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नाइजीरिया की सैमुअल बोस को हराया है 2-1 से। अभी दो और मुकाबले कुश्ती में होंगे। 76 किलो में किरण उतर रही हैं और 57 किलो में रोहित आवारे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उधर शूटिंग में महिला 50 मीटर प्रोन में अंजुम मोदगिल और तेजस्विनी सावंत भारत की ओर से उतरेंगी। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का क्वालिफाइंग मुकाबला भी हो रहा है, जिसमें नीरज कुमार और अनीश भाग ले रहे हैं। एथलेटिक्स में कई मुकाबले हैं, पोल वॉल्ट पुरुषों का, महिलाओं और पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़, महिलाओं की लॉन्ग जंप और महिलाओं का डिस्कस थ्रो होगा, जिसमें सीमा पूनिया भारत की तरफ से होगी। बॉक्सिंग में आज रेस्ट डे है और मिक्स डबल और टेबल टेनिस में बैडमिंटन और टेबल टेनिस में मिक्स डबल्स और इंडिविजुअल और डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। और एक और महत्वपूर्ण मुकाबला है हॉकी में, महिला हॉकी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल होगा।
जी रेहान फजल, गोल्ड कोस्ट से हमारे वरिष्ठ सहयोगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शनिवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास हुए कथित रासायनिक हमले के जवाब में अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस अपने दोस्त सीरिया पर मिसाइल हमले के लिए तैयार रहे, क्योंकि अमरीकी मिसाइलें आ रही हैं। حالانکہ بعد میں ٹرمپ پرشاسن کی طرف سے یہ بیان بھی آیا کہ سیریا پر حملے کے بارے میں ابھی کوئی سمے سیما نردھارت نہیں کی گئی ہے۔ بہرحال راشٹرپتی ٹرمپ کے بیان کے جواب میں روس نے بھی کہا کہ امریکی حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ ادھر سیریائی راشٹرپتی بشر الاسد نے ودروہیوں کے نینترن والے ڈوما شہر میں رسائنک حملوں کو انجام دینے میں اپنی کسی بھومکا سے انکار کیا ہے۔ سیریا کو لے کر بڑھتے انتراشٹریہ تناؤ نے سنیکت راشٹر کی چنتا بھی بڑھا دی ہے۔ سنیکت راشٹر سرکشا پریشد آج اس مسئلے پر وچار کرنے والی ہے۔ سیریا میں ہوئے تازہ گھٹنا کرم کی دشا اور دشا کیا ہو سکتی ہے؟ آج دنیا جہان میں ہمارے سہیوگی سندیپ سونی اسی کی پڑتال کر رہے ہیں۔
دنیا جہان سیریا کی راجدھانی دمشق سے لگ بھگ 10 کلومیٹر دور ودروہیوں کے نینترن والے ڈوما قصبے میں سندگدھ راسائنک حملے میں کئی لوگوں کی موت کی خبر آنے کے بعد امریکی راشٹرپتی ٹرمپ نے کٹھور بھاشا میں کئی ٹویٹ کیے۔ انہی میں سے ایک ٹویٹ میں راشٹرپتی ٹرمپ نے کہا،
سیریا میں بنا سوچے سمجھے کیے گئے کیمیکل حملوں میں کئی لوگ مارے گئے ہیں، مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ جگہ سیریائی سینا کے قبضے میں ہے اور باہری دنیا کا یہاں پہنچنا مشکل ہے۔ راشٹرپتی پوتن، روس اور ایران جانور بشر الاسد کو سمرتھن دینے کے لیے ذمہ دار ہیں، انہیں اس کے لیے بڑی قیمت چکانی ہوگی۔
راشٹرپتی ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے آنے سے پہلے سیریا اور روس دونوں ہی اس راسائنک حملے میں اپنا ہاتھ ہونے سے انکار کر چکے تھے۔ حالانکہ حملے والے دن ڈوما میں موجود ایک ڈاکٹر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا،
I am working for the hospital for about 4 years, but the last 2 days were the worst day.
میں لگ بھگ 4 سال سے اس اسپتال میں کام کر رہا ہوں، لیکن یہ 2 دن میرے جیون کے سب سے برے دن تھے۔ شنیوار کی شام راسائنک حملے کے شکار کار بنے کئی لوگ اسپتال لائے گئے، وہ یا تو ایک دم سن پڑے تھے یا ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ہمارے پاس انہیں بچانے کے لیے آکسیجن اور معمولی دواؤں کے سوا کچھ نہیں تھا۔
ڈوما میں ڈاکٹر کے اس بیورے سے الگ سیریا کی سرکار نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ سیریائی عرب سینا چرم پنتھ سے لڑنے کے لیے جب جب آگے بڑھتی ہے، دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ راسائنک حملہ ہوا ہے جس کا فائدہ چرم پنتھیوں کو ملتا ہے۔ سیریا میں جاری موجودہ سنگھرش کی شروعات راشٹرپتی بشر الاسد کے خلاف 7 سال پہلے شانتی پورن ودروہ کے روپ میں ہوئی تھی، جو اب ایک بڑے گرہ یدھ میں بدل چکا ہے۔ اس سنگھرش میں 3.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، کئی شہر تباہ ہو گئے ہیں اور بڑی سنکھیا میں لوگوں کا پلائن ہوا ہے۔ دیش میں اشانتی پھیلی تو ودروہیوں کے خلاف کاروائی تیز ہوئی۔ اس پر وپکشی سمرتھکوں نے سرکار سمرتھک سینکوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ راشٹرپتی اسد نے ویرودھی سوروں کو کچلنے کی قسم کھائی اور اسے ودیش سمرتھت آتنکواد کا نام دیا۔ لیکن سیریا کے اس سنگھرش میں روس، امریکہ اور باقی دیش کہاں سے آ گئے؟ امریکہ کی ڈیلاویئر یونیورسٹی میں انتراشٹریہ معاملوں کے جانکار پروفیسر مقتدر خان کہتے ہیں،
جو اسد کی حکومت ہے وہ اس کے 2 فورن سپورٹرز ہیں، ایران اور رشیا۔ رشیا نے شروع سے سپورٹ کیا ہوا ہے، ان کو اپنا الائی سمجھتے ہیں، اور ان کے سپورٹ میں رشیا نے پچھلے 2-3 سال سے مسلسل آئیسس پر بمباری کی۔ اور دوسری، ایران اس لیے بھی سپورٹ کرتا ہے کہ وہ شیعہ حکومت ہے اور ان ایران کی طرف سے حزب اللہ فائٹر بھی اسد کی حکومت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ سیریا میں جو آئیسس ہے اس کے خلاف امریکہ لڑتا ہے، سیریا میں جو کرڈش فائٹرز ہیں اس کے خلاف ترکی لڑ رہا ہے، اور جو بھی اسد کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے لڑ رہے ہیں رشیا اور ایران۔
سیریا کا سنگھرش جتنا باہر سے دکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ ویاپک ہے۔ زمین کے نیچے سے نکلنے والا تیل اور تیل کی راجنیتی اس سنگھرش کی دشا اور دشا طے کرنے میں اہم بھومکا ادا کرتی ہے۔ دلی میں جواہر لال نہرو وشو ودیالیہ میں مدھیہ پورو معاملوں کے جانکار پروفیسر کمال پاشا بتاتے ہیں،
سیریا کی پالیسی ہے عرب اسرائیلی کانفلکٹ پہ، اس پہ نظر ڈالنا چاہیے، کیونکہ سیریا لگاتار اپنا گولان ہائٹس اسرائیل سے مانگ رہا ہے، جو کہ وہ امریکہ کے سپورٹ سے منع کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عرب سپرنگ کے بعد جو ریجیم چینج ہوا لیبیا میں، ایجپٹ میں، ٹونیشیا میں اور انی ملکوں میں، یہاں کچھ لمبائی کھینچتا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہاں دوسرے گٹ بھی جیسا حزب اللہ ہے، ترکی ہے، ایران ہے، رشیا ہے، سعودی عربیہ، قطر साथ अन्य मुल्क भी इसमें शामिल हो गए हैं। अमेरिका ये चाहता है कि कतार, सऊदी अरेबिया और खाड़ी के देशों से वहाँ का तेल और गैस सीरिया होते हुए यूरोप को पहुंचाए। इसमें ईरान का भी गैस और तेल शामिल करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को मिला के तेल और रेजिम चेंज और रशिया का जो सीरिया के साथ सपोर्ट है अपने नेवल बेसिस, मिलिट्री बेसिस के लिए, इन सब चीजों को मिलके जो है सीरिया में लगातार लड़ाई जारी है, जिसमें ईरान, टर्की, इसराइल, हिजबुल्ला, रशिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, इस्लामिक स्टेट, तो ये सब बेसिकली अमेरिकन कंट्रोल एनर्जी रिसोर्सेस को डाइवर्ट करने और डोमिनेट करने की वजह से हो रहा है।
जानकार मानते हैं कि सीरिया में इस समय अमेरिका से ज्यादा वजनदारी रूस की है। रूस ने सीरिया में बाकायदा अपने ठिकाने बना रखे हैं और सीरिया के आसमान से लेकर जमीन तक हर जगह उसकी मौजूदगी है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने डूमा में संदिग्ध रासायनिक हमले के बाद रूस, ईरान और सीरिया के राष्ट्रपति असद को जिन शब्दों में चेतावनी दी है, उससे क्या आने वाले दिनों में सीरिया की मौजूदा तस्वीर बदल भी सकती है? प्रोफेसर मुक्तदर खान को ऐसा नहीं लगता।
रशिया के इलेक्शंस के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने खुद पुतिन से बात की और उनको मुबारकबादी दी और उनके साथ कोई सख्ती से बात नहीं है। तो वॉशिंगटन एक किस्म से स्किज़ोफ्रेनिक हो गया है रशिया के, कहते तो कई चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि लोगों की नजर में रशिया अभी भी वैसे ही है जैसा हम लोग 1970s-80s में सोवियत यूनियन को सोचते थे। अगर आप एक्चुअली जाके देखें तो रशिया की इकोनॉमी इटली की इकोनॉमी से भी छोटी है। ज्यादा पावर प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, वो हथियार में इन्वेस्ट करता है और नई टेक्नोलॉजी जरूर क्रिएट करता है, लेकिन उसमें वो कैपेसिटी नहीं है जो एक ग्रेट पावर में होती है कि वो सस्टेन कर सके प्रेजेंस दूसरे मुल्कों में ऑल ओवर द वर्ल्ड।
इसके विपरीत प्रोफेसर कमाल पाशा कहते हैं कि इस बार राष्ट्रपति ट्रंप की भाषा और शब्द गौर करने लायक हैं। कुछ दिन पहले तक राष्ट्रपति ट्रंप सीरिया से पूरी तरह वापसी करना चाहते थे, लेकिन अमरीकी रक्षा मुख्यालय, पेंटागन और खुफिया एजेंसी CIA ने ट्रंप की इस योजना को 6 महीने के लिए टाल दिया है और अब अमरीका सीरिया में कुर्दों की मदद के लिए अपने ठिकानों का विस्तार करना चाहता है। प्रोफेसर कमाल पाशा बताते हैं,
सबसे खतरनाक वार्निंग अमेरिका के कोई राष्ट्रपति ने रूस को दिया है, जिसमें प्रेसिडेंट पुतिन का नाम लेके पहली बार उन्होंने ये धमकी दी है, जिसमें उन्होंने असद को भी हैवान के लखब से जिक्र किया है। जो भी हमला अमेरिका सोच रहा है, कर सकता है, उससे अंदेशा ये हो रहा है कि अगले 6 महीनों में काफी घमासान टकराव होने की उम्मीद है।
सीरिया के संघर्ष में शामिल अधिकतर समूहों और देशों पर ये आरोप है कि वो बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमानों और राष्ट्रपति असद के समर्थक अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। इससे सीरिया में पहले से मौजूद जिहादी संगठन इस्लामिक स्टेट और अलकायदा को भी फलने फूलने का मौका मिल रहा है। दूसरी तरफ सीरियाई सरकार के मुख्य समर्थक रूस और ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं अमरीका, तुर्की और सऊदी अरब विद्रोहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सीरिया के मामले में संयुक्त राष्ट्र की अभी तक की भूमिका बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं रही है। ऐसे में सीरिया का संकट खत्म कब होगा, कैसे खत्म होगा, इसका उत्तर फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आता।
दुनिया जहान के बारे में लिखिएगा अपनी राय। और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला किया है कि भाजपा नेता और उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और मामले की जांच CBI को सौंपी जाएगी। कुलदीप सेंगर के खिलाफ एक नाबालिग युवती ने बलात्कार का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अब तक सीरिया की डूमा में हुए कथित रासायनिक हमले के संबंध में अमरीका ने कोई फैसला नहीं लिया है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि ब्रितानी कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ राजनीतिक प्रचार के कारणों से जिन यूजर्स का डेटा शेयर किया गया है उनमें उनका डेटा भी शामिल है। अमरीकी संसद में वरिष्ठ रिपब्लिकन नेता पॉल रायन ने कहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और वो परिवार के साथ अपना वक्त बिताना चाहते हैं। पश्चिम अफ्रीकी राज्य निजेर का कहना है कि माली के साथ सटी उसकी सीमा के पास एक जर्मन सहायता कर्मी का अपहरण कर लिया गया है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अजित सारथी ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया गुरप्रीत कौर ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और खबरों का हर पहलू जानने के लिए जुड़े रहिए bbchindi.com के साथ। नमस्कार।